नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेक क्लार्क स्कॉट की बट हाउ डू इट नो कंप्यूटर की बुनियादी कार्यप्रणाली पर लिखी गई एक लोकप्रिय व्याख्यात्मक पुस्तक है। इसका उद्देश्य पाठक को तैयार उपकरणों के उपयोग से आगे ले जाकर यह समझाना है कि कंप्यूटर वास्तव में निर्देशों को कैसे ग्रहण करता, संचित करता और क्रियान्वित करता है। पुस्तक किसी आधुनिक मशीन के जटिल पुर्जों की सूची से आरंभ नहीं होती। इसके बजाय यह नैंड गेट जैसे अत्यंत सरल डिजिटल घटक से शुरू होकर क्रमशः बड़े तंत्र बनाती है। इस क्रम में बाइनरी संकेत, जोड़, स्मृति, पते, नियंत्रण और निर्देशों की भूमिका स्पष्ट होती जाती है। अंततः पाठक एक छोटे 8-बिट कंप्यूटर और उसके केंद्रीय प्रोसेसर की संरचना को वैचारिक रूप से देख सकता है। स्कॉट का दृष्टिकोण इंजीनियरिंग पाठ्य पुस्तक से अलग है, क्योंकि वे गणितीय औपचारिकता और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मताओं को सीमित रखकर कारण और परिणाम की श्रृंखला पर ध्यान देते हैं। 2009 में प्रकाशित यह पुस्तक विशेष रूप से उन सामान्य पाठकों के लिए है जिनके पास तकनीकी पृष्ठभूमि नहीं है, पर जो कंप्यूटर के भीतर चलने वाली प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, नैंड गेट से कंप्यूटर बनाने की क्रमिक पद्धति। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार यह है कि कंप्यूटर को रहस्यमय एकीकृत वस्तु मानने के बजाय छोटे निर्णयकारी घटकों के संयोजन के रूप में देखा जाए। स्कॉट नैंड गेट से शुरुआत करते हैं जो दो इनपुट संकेतों के आधार पर एक आउटपुट देता है। इसकी उपयोगिता केवल एक नियम जानने में नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी एक प्रकार के गेट को अलग विन्यासों में जोड़कर नॉट एंड और एक्सऑर जैसे दूसरे तर्क कार्य बनाए जा सकते हैं। इससे पाठक समझता है कि डिजिटल हार्डवेयर की विविधता के पीछे कुछ दोहराए जाने योग्य नियम काम करते हैं। आगे यही तर्क गेट जोड़ने वाले परिपथ, चयन तंत्र और नियंत्रण संकेतों का आधार बनते हैं। यह निर्माणात्मक क्रम कारणों को छिपाता नहीं है। हर नया भाग किसी पहले बताए गए भाग की सीमा या आवश्यकता का उत्तर है। उदाहरण के लिए, केवल गणना करना पर्याप्त नहीं, क्योंकि परिणाम को रोक कर रखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्मृति जैसे घटक सामने आते हैं। इस पद्धति का बौद्धिक लाभ यह है कि पाठक को तैयार केंद्रीय प्रोसेसर का चित्र याद नहीं करना पड़ता। वह देखता है कि जटिलता साधारण नियमों की परतों से उत्पन्न होती है। हालांकि वास्तविक आधुनिक चिपों का पैमाना बहुत बड़ा है, पुस्तक का छोटा मॉडल उनके मूल डिजिटल तर्क को समझने के लिए पर्याप्त आधार देता है। दूसरा, बाइनरी कोड और अर्थ देने वाले संकेतों का संबंध स्कॉट हार्डवेयर की चर्चा को कोड की आवश्यकता से अलग नहीं करते। कंप्यूटर के भीतर वोल्टेज जैसे भौतिक संकेत होते हैं, लेकिन वे अपने आप संख्या, अक्षर या आदेश नहीं होते। किसी संकेत को शून्य या एक की तरह पढ़ना, बिटों के समूह को संख्या मानना और किसी निश्चित बिट क्रम को निर्देश मानना, ये सभी सहमति से बने नियम हैं। पुस्तक इसी कारण बाइनरी पद्धति को केवल कठिन गणित नहीं बल्कि मशीन और अर्थ के बीच की भाषा के रूप में प्रस्तुत करती है। 8-बिट का एक समूह कितने अलग पैटर्न दिखा सकता है, यह समझने पर स्पष्ट होता है कि वही बिट कभी संख्या, कभी अक्षर और कभी मशीन निर्देश का प्रतिनिधित्व क्यों कर सकता है। अंतर्बिटों में नहीं, उन्हें पढ़ने वाले संदर्भ में होता है। यह विचार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध को भी साफ करता है। सॉफ्टवेयर कोई जादुई अमूर्त परत नहीं बल्कि कोडित पैटर्न है जिन्हें प्रोसेसर अपने निर्धारित नियमों के अनुसार आदेश मानता है। पाठक के लिए यह एक उपयोगी सुधार है, क्योंकि दैनिक जीवन में स्क्रीन पर दिखने वाले शब्दों और मशीन के भीतर के बिटों के बीच का अंतर अक्सर धुंधला रहता है। पुस्तक बताती है कि अनुवाद की कई परतें हो सकती हैं, पर सबसे नीचे नियंत्रित संकेत और उनके लिए तय किए गए कोड होते हैं। तीसरा, स्मृति, पते और रैम में जानकारी तक पहुंच। कंप्यूटर की उपयोगिता केवल तेज गणना में नहीं बल्कि सूचना को संगठित ढंग से रखने और फिर सही सूचना तक पहुंचने में है। पुस्तक स्मृति को ऐसी जगह के रूप में समझाती है जहां बिटों के समूह रखे जा सकते हैं और प्रत्येक स्थान को एक पता दिया जाता है। पता स्वयं जानकारी का अर्थ नहीं बताता, वह केवल यह बताता है कि जानकारी किस स्थान पर रखी है या किस स्थान से ली जानी है। यह भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रैम और स्मृति पते की वास्तविक भूमिका समझ आती है। केंद्रीय प्रोसेसर को हर समय सभी डेटा एक साथ नहीं मिलता, उसे पते के माध्यम से एक चुने हुए स्थान का डेटा पढ़ना या उसमें नया डेटा लिखना पड़ता है। इस चयन के लिए डिकोडर, बस और नियंत्रण संकेत जैसे तंत्र आवश्यक होते हैं। स्कॉट का छोटा कंप्यूटर मॉडल यह दिखाता है कि स्मृति का आकार सीमित होने पर भी व्यवस्था का सिद्धांत नहीं बदलता। आधुनिक कंप्यूटर में बहुत अधिक स्थान और तेज तकनीक होती है, लेकिन पता चुनना, डेटा लाना और परिणाम लौटाना जैसी बुनियादी क्रियाएं बनी रहती है। पाठक यह भी समझ सकता है कि प्रोग्राम और डेटा दोनों स्मृति में ब्रिक पैटर्न के रूप में रह सकते हैं। इसलिए मशीन के लिए अंतर इस बात से बनता है कि नियंत्रण तंत्र किसी पैटर्न को किस समय और किस भूमिका में पढ़ रहा है। चौथा, केंद्रीय प्रोसेसर का फेज। डिकोड और एग्जीक्यूट चक्र। पुस्तक का केंद्रीय तर्क यह स्पष्ट करता है कि केंद्रीय प्रोसेसर किसी मानव की तरह निर्देशों का अर्थ नहीं समझता। वह बार बार एक अनुशासित चक्र चलाता है। पहले अगला निर्देश स्मृति से लाया जाता है, फिर उसके ब्रिक पैटर्न के आधार पर यह तय होता है कि कौन सी क्रिया करनी है, और अंत में आवश्यक परिपथ उस क्रिया को पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया को सामान्यतः फेज, डिकोड और एग्जीक्यूट चक्र कहा जाता है। स्कॉट के विवरण में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, नियंत्रण खंड और घड़ी संकेत जैसे भाग इस चक्र को क्रमबद्ध बनाते हैं। घड़ी का महत्व विशेष है, क्योंकि अनेक परिपथों को सही क्रम में बदलना होता है। यदि डेटा बहुत जल्दी या गलत चरण में आगे बढ़े तो परिणाम विश्वसनीय नहीं रहेगा। पुस्तक यह भी दिखाती है कि एक छोटा निर्देश समूह होने पर भी कंप्यूटर उपयोगी व्यवहार कर सकता है, जैसे डेटा लोड करना, जोड़ना, स्थानांतरित करना या किसी दूसरी जगह जंप करना। जंप निर्देश विशेष रूप से बताता है कि प्रोग्राम हमेशा सीधी पंक्ति में नहीं चलता। शर्त और पुनरावृत्ति जैसे व्यवहार इसी प्रकार के नियंत्रण से संभव होते हैं। इस प्रकार पाठक को प्रोसेसर की गति का नहीं, उसकी व्यवस्थित निर्णय प्रक्रिया का आधार समझ में आता है। अंत में छोटे 8-बिट मॉडल की शक्ति और उसकी सीमाएं। पुस्तक अंत तक एक कार्यशील 8-बिट केंद्रीय प्रोसेसर की वैचारिक रचना कराती है। यह मॉडल जानबूझकर छोटा रखा गया है ताकि पाठक हर रजिस्टर, बस, नियंत्रण संकेत और निर्देश का संबंध देख सके। 8-बिट सीमा का अर्थ है कि एक बार में संभाली जाने वाली संख्याओं, पतों और कोडों की सीमा अपेक्षाकृत छोटी होगी। फिर भी शिक्षण के लिए यही सीमा लाभ बन जाती है। बहुत बड़े आधुनिक प्रोसेसर में समानांतर इकाइयां, विशाल कैश, बहुस्तरीय स्मृति, पाइपलाइनिंग और जटिल निर्देश प्रणालियां मूल सिद्धांत को ढक सकती है। स्कॉट का मॉडल इस आवरण को हटाता है। पाठक देखता है कि अंकगणितीय तर्क इकाई गणना करती है, रजिस्टर अस्थायी मान रखते हैं, स्मृति निर्देश और डेटा देती है, और नियंत्रण खंड सही समय पर सही मार्ग चुनता है। साथ ही इस मॉडल को वास्तविक समकालीन कंप्यूटर का पूर्ण प्रतिरूप नहीं समझना चाहिए। पुस्तक उन्नत विषयों जैसे पाइपलाइनिंग, माइक्रोकोड या विस्तृत फाइनाइट स्टेट मशीनों पर गहराई से नहीं जाती। यह उसकी घोषित भूमिका के अनुरूप एक सीमा है, दोष नहीं। इसका उद्देश्य आधुनिक चिप डिजाइन का संपूर्ण सर्वेक्षण देना नहीं, बल्कि वह बुनियादी ढांचा देना है जिसके आधार पर आगे की जटिलताओं को समझा जा सके। निष्कर्ष में, बट हाउ डू इट नो उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कंप्यूटर का नियमित उपयोग करते हैं, पर उसके भीतर होने वाली प्रक्रिया को लेकर केवल सतही जानकारी रखते हैं। उच्च विद्यालय के विद्यार्थी, शुरुआती प्रोग्रामर, तकनीक के शिक्षक और गैर तकनीकी पेशेवर इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। इसे पढ़ने के लिए पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत गणित या कंप्यूटर विज्ञान की औपचारिक शिक्षा आवश्यक नहीं बताई गई है। हालांकि क्रम को बनाए रखते हुए पढ़ना उपयोगी रहेगा। व्यावहारिक लाभ यह है कि रैम, केंद्रीय प्रोसेसर, बाइनरी, निर्देश और सॉफ्टवेयर जैसे आम शब्द अलग अलग परिभाषाओं के बजाय एक जुड़ी हुई प्रणाली के हिस्से के रूप में समझ आते हैं। बौद्धिक स्तर पर पुस्तक यह दिखाती है कि मशीन की जटिलता अक्सर साधारण नियमों के विशाल संयोजन से आती है। यही समझ आगे प्रोग्रामिंग, डिजिटल लॉजिक या कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीखने में ठोस आधार बन सकती है। समान विषय की कई पुस्तकों में या तो इलेक्ट्रॉनिक विवरण बहुत भारी हो जाता है, या फिर वे रूपकों के सहारे वास्तविक यांत्रिकी को छोड़ देती है। स्कॉट की अलग पहचान उनके निर्माण आधारित तरीके में है। वे पाठक को केवल यह नहीं बताते कि कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, बल्कि यह क्रम दिखाते हैं कि एक भाग से दूसरे भाग की आवश्यकता क्यों पैदा होती है। इसकी सीमा यह है कि आधुनिक प्रोसेसरों की उन्नत तकनीकों का व्यापक विश्लेषण नहीं मिलता। फिर भी मूल सिद्धांत समझाने वाली पुस्तक के रूप में इसका छोटा 8-बिट मॉडल स्पष्ट, संगत और असाधारण रूप से उपयोगी है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जे क्लार्क स्कॉट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।